नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 3% अधिक। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की संभावना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ 1999 में जम्मू कश्मीर में करगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारत के पंजा कुश्ती दल ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित 7 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। उत्तर प्रदेश में आज गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर जिलों में रहेंगे। गाजीपुर में वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में चुनाव सभाएं करेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दुद्धी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। यहां आम चुनाव के अंतिम चरण के साथ ही उपचुनाव होंगे। बाद में वो रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी आज कुशीनगर में रोड शो करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह बिहार में आरा, बक्सर और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी जहानाबाद, काराकाट, नालंदा, सासाराम और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद अपनी बेटी और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रचार करेंगे। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सासाराम, बक्सर और पाटलिपुत्र में जनसभाएं करेंगे। झारखंड के संथाल क्षेत्र के 3 निर्वाचन क्षेत्रों गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और अन्य दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दुमका और गोड्डा में आज चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल दुमका में जनसभा करेंगे।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में 3% अधिक दर्ज हुई है। निर्वाचन आयोग ने कल इसकी जानकारी दी। शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान करने वाले लोगों की वास्तविक संख्या आयोग ने जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 64.95% पात्र महिला मतदाताओं ने 61.95% पात्र पुरुष मतदाताओं की तुलना में अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसके अलावा थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 18.67% दर्ज की गई। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम पंजाब के जालंधर संसदीय सीट की जानकारी दे रहे हैं। जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है। कुल 9 विधानसभा वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 16,54,000 मतदाता हैं।
पंजाब के दुआबा क्षेत्र में पड़ने वाला जालंधर आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले वर्ष कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के अचानक निधन पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू को जीत मिली थी, जब वे कांग्रेस पार्टी से दल बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार सुशील कुमार रिंकू भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में हैं। इधर चुनाव की बेला पर शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर आए पवन कुमार टीनू पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से शिरोमणि अकाली दल में शामिल मोहिंदर सिंह केपी अब अकाली दल के उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी के बलविंदर कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अनेक प्रमुख पार्टियों के कद्दावर उम्मीदवार दल बदलकर एक से दूसरी पार्टी में आए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8% तक पहुंच सकती है। बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास की प्रवृत्ति को उजागर करती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया था। उन्होंने ये खुलासा कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महासभा की बैठक में किया। बैठक में श्री शरीफ ने कहा कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि समझौते का उद्देश्य शांति और स्थिरता बढ़ाना था, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिकों की जम्मू कश्मीर के करगिल में घुसपैठ से करगिल युद्ध शुरू हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने देश की पूर्वोत्तर सीमाओं से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की घुसपैठ कराने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
असम विशेष कार्यबल द्वारा पहले से गिरफ्तार 33 लोगों को अभिकरण ने अपने हाथ में ले लिया है। पिछले वर्ष नवंबर में एनआईए ने पूरे देश में विदेशी मुद्रा के साथ साथ कई डिजिटल उपकरण आपत्तिजनक डेटा जब्त किए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों से हर महीने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की भारत में घुसपैठ की जा रही है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ पल्लवी परमार, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार कल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
यह पुरस्कार 2000 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक सैन्य शांति रक्षक के प्रयासों को मान्यता देता है। ये प्रस्ताव महिलाओं और लड़कियों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा और संयुक्त राष्ट्र के लिए लैंगिक संबंधी जिम्मेदारियों की रक्षा का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मेजर राधिका सेन ने कांगो गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन में अपनी सेवाएं दी। वहां उन्होंने उत्तर कीवू में कम्युनिटी अलर्ट नेटवर्क स्थापित करने में सहायता दी। मेजर राधिका सेन ये पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। उनसे पहले दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत मेजर सुमन गवानी ने ये सम्मान 2019 में प्राप्त किया था। समाचार कक्ष से मनोज।
भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति होकर इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट।
सत्यदीप गुप्ता ने सोमवार को दोपहर में 8,516 मीटर ऊंचे माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने आधी रात को 12:45 पर 8,849 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनके साथ पर्वतारोहण मार्गदर्शक पिस्टिम्बा शेरपा और नीमा उंगडी शेरपा भी थे। श्री गुप्ता ने इससे पहले 21 मई को माउंट एवरेस्ट और 22 मई को माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई की थी। समाचार कक्ष से जया भारती।
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने ताशकंद 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। श्रीमंत झा ने 2 श्रेणियों में भाग लेकर 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता। मास्टर्स वर्ग में लक्ष्मण सिंह भंडारी ने 2 कांस्य पदक हासिल किए जबकि सचिन गोयल ने सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस बीच महिलाओं की प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश की ईबी लोलेन ने 2 कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी भीषण गर्मी की स्थिति में कल से धीरे धीरे कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। भीषण गर्मी की स्थिति कल तक जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में बनी रहेगी। एक रिपोर्ट।
हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है जिससे व्यापार भी प्रभावित हुआ है। पशुपालकों का कहना है कि गर्मी में दूध उत्पादन में भी कमी आई है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर पशुओं को छाया और ठंडे के कमरों में बांधने, पर्याप्त पानी पिलाने और दिन में 2 बार नहलाने की सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को लू से बचने के उपाय बताए हैं और अस्पतालों में लू से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद विमलेंदु। भीषण गर्मी अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सूर्य के कोप से शहर ज्यादा बेचैन, रातें 60% तक ज्यादा गर्म, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। अमर उजाला का कहना है, प्रचंड गर्मी से उबर रहा उत्तर भारत, दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के करीब। दैनिक भास्कर लिखता है, कंक्रीट कवर बढ़ने से शहरों में असल से 9 डिग्री ज्यादा महसूस होने वाली गर्मी। राष्ट्रीय सहारा सचेत करता है, और बढ़ेगी मौसम की गर्मा गर्मी, देश में जगह जगह टूट रहा गर्मी का रिकॉर्ड। जनसत्ता की अहम खबर है, लोकसभा चुनाव के 6 चरण में महिलाओं ने पुरूषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। निर्वाचन आयोग ने जारी किए ताजा आंकड़े। पत्र लिखता है, लगातार दूसरी बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं से 3% ज्यादा रही। चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरें और नेताओं के शब्दबाण अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 सप्ताह बढ़ाने के मामले पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, पीठ ने कहा मुख्य न्यायाधीश ही इस संबंध में फैसला करेंगे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.4% रहेगी विकास दर, एसबीआई के अनुसार 8% के स्तर को छू सकती है वर्ष 23-24 की आर्थिक विकास दर, बेहतर मॉनसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। हिन्दुस्तान की खबर है, आयुष इलाज के लिए बीमा दायरा बढ़ेगा, कैशलेस सुविधा मिलेगी, आयुष पद्धति को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का काम अंतिम चरण में, इलाज के मानक दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने आयकर विभाग के हवाले से लिखा है, पैन और आधार को लिंक करें नहीं तो कटेगा डबल टीडीएस, 31 मई से पहले जोड़ने की दी है सलाह, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 3% अधिक। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की संभावना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ 1999 में जम्मू कश्मीर में करगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।